मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 2 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इन मित्रों के नाम हैं सावित्री पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से और नीरज चौधरी शहडोल मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय के बारे में बताऊं, आज मुख्य विषय के तहत यूं कह लीजिए कि मैं आप सबसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में ही बात करना चाहूंगा। हालांकि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन उस पर हम लोग कल बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जो 15 दिन की क्लासेस में आने वाले हैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। मित्रों, मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले जो भी निर्देश मैंने आप सबको दिए हैं उन निर्देशों को आपने सुना होगा और सुना ही नहीं होगा बल्कि उनका पालन करने की भी कोशिश की होगी, आप पालन कर रहे होंगे। आपकी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे सकारात्मक होती जा रही होगी और आपके अंदर एक उत्साह भी पैदा होता जा रहा होगा कि अब क्लासेस के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आप सब यहाँ इकट्ठे होंगे, हमारी टीम होगी और हम लोग इस बात पर बहुत विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की कैसे जानी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए, उसके लिए सोचा कैसे जाना चाहिए, उसके लिए आंसर कैसे लिखा जा सकता है, उस अखबार कैसे पढ़ेंगे, न्यूज़ कैसे सुनेंगे, किताबें कैसे पढ़ेंगे, इनके बारे में ढेर सारी बातें होंगी। हालांकि दिन तो सुनने में 15 दिन ही हैं, लेकिन दोस्तों उसमें मिनिमम 90 आवर्स 90 घंटे आप सुनेंगे केवल इस पर। तो आप कल्पना करके देखिए कि सच में कितने विस्तार और गहराई के साथ इस विषय पर बात होगी। तो आप अपने मन में उत्साह को लगातार जन्म दीजिए, पैदा कीजिए, लगातार बढ़ाते चलिए। आज मुझे आप सबसे जो बात कहनी है वो ये फ्रेंड्स की जो 15 दिन की क्लासेस है, ठीक है आपको इसके बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कुछ बातें कही हैं, लेकिन इसका एक जो बहुत बड़ा मकसद है जिसे आप महसूस करेंगे वह है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, आपके व्यवहार को बदलना यानी कि सकारात्मक रूप में, आपके सोच को बदलना वो भी सकारात्मक रूप में, और आपकी पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का आत्मविश्वास, एक अलग किस्म की चमक और एक अलग किस्म का टटकापन भरना, यह भी एक मकसद होता है और स्टूडेंट इसे स्वीकार भी करते हैं। इसके लिए अब आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास अलग अलग तरह के मेल आते हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड ये रहती है कि सर हम यहां से आ रहे हैं, वहां से कोई और स्टूडेंट आने वाला हो तो आप बता दें, मेरा हमारा साथ हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मैं पहली बार घर से निकल रही हूं, अगर उधर से कोई आने वाला हो तो बता दीजिए, साथ हो जाएगा। कोई किसी की रिक्वेस्ट ये आ रही है कि मेरे साथ इसी को मेरे कमरे में रुकवाया जाए। आप सबकी रिक्वेस्ट है और आप सबकी रिक्वेस्ट शिरोधार्य है, सर माथे पर है, लेकिन यहां मेरा एक निर्देश है। निर्देश यह है मित्रों कि आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं, आप ये बताइए कि कोई काम दूसरी बार होता है, दूसरी बार होगा लेकिन वो तभी होगा जब वो पहली बार हो चुका हो। तो इस दौर में बहुत से काम आप पहली बार करेंगे तो उनको होने दीजिए। अगर कोई पहली बार आपको काम करने का अवसर दे रहा है तो मान करके चलिए कि वो आपकी पर्सनालिटी को एनलार्ज कर रहा है, आपको मौका मिल रहा है कि आप दूसरे क्षेत्र में भी अजमाएं अपने आप को, दूसरे क्षेत्र में भी प्रवेश करें, वहां भी अपना दखल रखने की शुरुआत करें। भय किस बात का है आपको? किसी बात का भय नहीं होना चाहिए, भय जैसी कोई बात नहीं। हाँ, सतर्कता आपको जरूर रखनी होगी। तो यहां जो मैं आपसे 2-3 बातें स्पेशली कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, वो ये कि आप अपने मन से भय आशंका इन सब को बिल्कुल हटा दें और अपने पैरों पर खड़े होने की शुरुआत करें। पैरों पर खड़े होने की शुरुआत कहने का मतलब है कि अब लगभग आपके आने में चलिए जो भी है 12-13-14 दिन बचे हुए हैं, कुछ लोग ट्रेवल शुरू कर देंगे तो 12 दिन बचे हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, प्लान करें कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी लेकिन अपने घर में अपनी एक जगह बना लें या अपना जो बैग है या जो अटैची है उसे फिक्स कर लें कि मुझे यह लेकर के जाना है, और जो भी आपको यहां लेकर के आने वो चीजें उनमें डालनी शुरू कर दें। उसको टाले मत, टालने की आदत को टालें। आपको लगता है कि अच्छा ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां मेरे लिए जरूरी होती हैं, और मैं कहना भी चाहूंगा कि आप जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं या कुछ इस किस्म की दवाइयां होती हैं, जैसे किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उससे संबंधित दवाई, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है तो उससे संबंधित दवाई, इस तरह की जो दवाइयां होती हैं वो दवाइयां आप उसमें डाल लें, और अपने साथ कुछ मेडिसिन रखें डॉक्टर की एडवाइस लेकर के। ये कपड़े रखने हैं, ये किताबें रखनी हैं, रास्ते के लिए ये रखना है, तो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती जा रही हों प्लीज़ आप उन्हें उसमें रखते चले जाइए। मैं अपनी ओर से एक बात जरूर कहना चाहूँगा और वो ये कि आप क्लास में लेकर आने के लिए कोई ऐसी चीज़ रखें जो हार्ड हो, यानी तख्ती नुमा जिसे आप कह लीजिए, पैड जैसा हार्ड पैड हो। वो इसलिए क्योंकि क्लासेस में जब कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लिखने में आसानी हो, क्योंकि जहां आप बैठेंगे तो उसके सामने आपको टेबल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बैठने की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप टेबल पर झुक करके लिख सकें। तो आपके हाथ में एक ऐसी हार्ड चीज होनी चाहिए कि ताकि आप जब लिखें तो आपके पेज मुड़े नहीं, अदरवाइज उसमें लचक होगी तो लिखने में आपको दिक्कत होगी। ये एक आपकी जरूर रिक्वायरमेंट, और स्वाभाविक है कि जब लिखने की बात मैं कह रहा हूं तो पेन तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, रास्ते में क्या पढ़ेंगे आप, टाइम आपको जब यहां मिलेगा जहां आप रुक रहे हैं रात में, उस समय आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, तो उस ढंग से आप अपने अपने अपनी सोच के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं, हमारी ओर से कोई निर्देश नहीं है। दूसरी बात कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ये काम किसी को सौंपिए मत, आपको तैयारी खुद करनी है, खुद तैयारी करनी है। जो भी तैयारी है, एक एक सामान निकालना है तो खुद ही निकालना है, बैग अटैची जमानी है तो खुद ही जमानी है, जो कुछ भी करना है। याद रखिए कि एकेडमी में आने से संबंधित जिस एक्टिविटीज की भी जरूरत है उसे आप अकेले करेंगे, किसी भी दूसरे की मदद नहीं लेंगे। हाँ, अगर किसी से कोई सलाह लेनी हो तो ये बात अलग है कि आप थोड़ी सी सलाह ले लें। मेरी ओर से एक बात और है कि कभी कभी होता यह है कि हालांकि मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस आपको भेजे भी जाएंगे, मिल भी जाएंगे आपको, लेकिन एक हल्का सा कोई गर्म कपड़ा, स्वेटर जैसा जरूर अपने साथ रख लें कि अगर बाई दिवे बारिश हो जाती है, हल्की सी ठंड बढ़ जाती है, तो बेहतर होगा कि आप वो स्वेटर अपने शरीर पर डाल लें, क्योंकि याद रखिए कि 15 दिन तक आपको स्वस्थ रहना है, पूरी तरह स्वस्थ रहना है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका एक मिनट भी क्लास के बिना बीते। अगर क्लास चल रही है तो आप क्लास में हैं, तो मान करके चलिए कि आप इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि आप बीमार पड़े, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं आपको अपने अपनी आवश्यकता के हिसाब से करके आनी है। तो मित्रों, ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बस आज इतना ही। अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय से पहले मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहला तो यह है फ्रेंड्स कि इस बीच में अमेरिका और तालिबान के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इस पर मैं डेफिनेटली बात करूंगा, कल परसों जब भी समय मिलेगा मैं बात करूंगा, लेकिन आज इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे आप उन्हें पढ़ें, और खासकर इस समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस एंगल को ध्यान में रखते हुए। आज मैं आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट्स इस तरह के प्रोवाइड भी कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक आर्टिकल छपा है रुचिर शर्मा जी का। रुचिर शर्मा बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं। कोरोना वायरस और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस तरह का आर्टिकल है, और उसमें उन्होंने खासकर ये बात बताने की कोशिश की है कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है ये वापस न चला जाए, मतलब लोग अपने ही लोकल तरीके से ही सोचना शुरू कर दें, हम लोकल ही प्रोडक्शन करेंगे, लोकल ही मार्केट ढूंढेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो फैल रहा है। इस तरह से बहुत ही अच्छा विषय यह है और आप सबको इसे पढ़ना चाहिए, और मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उनको एश्योर करूंगा कि इस आर्टिकल को हम लोग हिंदी में उपलब्ध कराएंगे। आज आपको करंट कंटेंट के तहत आयुष्मान भारत में नवाचार की आवश्यकता, हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, उसका हिंदी वर्जन एडिटेड फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया गया है, तो प्लीज इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ सेक्टर की एक बहुत बड़ी सरकार की योजना है, तो उसमें क्या नवाचार चाहिए। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा कि आयुष्मान भारत में क्या क्या हो रहे हैं, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, वो तो समीक्षात्मक पूछेगा कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, असफल क्यों हो रहा है, इसकी सफलता के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जो नवाचार है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि इसकी सफलता के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस आर्टिकल को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो करंट अफेयर्स है, जो करंट कंटेंट है, उसका क्या रोल है और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दोस्तों जो करंट कंटेंट है ये आप जानते हैं कि ये बहती हुई नदी है, ये ऐसा तालाब नहीं है कि अब आपका मन कर रहा है कि नहाकर आया जाए और आप गोता लगाकर आ जाए, ये बहती हुई नदी है। यदि आप इसके साथ बह रहे होंगे लगभग लगभग पिछले 1.5 साल से, नहीं तो 1.25 साल से तो पक्के तौर पर, तब तो आप मान करके चलिए कि करंट अफेयर्स पर आपकी कमांड हो जाएगी, यानी कि इसके साथ दोस्ती आपकी है और ये आपकी मदद करेगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि काफी कुछ अवसर आपने खो दिया है, काफी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से अवसर आपने खो दिया है, काफी कुछ अवसर आपने खो दिया है। चलिए जो इसके साथ चल रहे हैं, इस प्रवाह में तैर रहे हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं लगातार इस पर, इस इशू पर बात करता रहूंगा प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के, जो भी वक्त मुझे मिलेगा। लेकिन अब वो क्या करें जिन्होंने अवसर खो दिया है। मित्रों यहां मैं आपको दो बातें विशेष रूप से बताना चाहूंगा। जैसे जैसे प्री एग्जामिनेशन नजदीक आता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि जो मैगजीन्स हैं वो मैगजीन्स आपके करंट अफेयर्स का कलेक्शंस निकालेंगी, करंट अफेयर्स का कलेक्शन। और बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बकायदे अपने टेस्ट सीरीज के तहत भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अब आपको करना यह है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनके पास बहुत बड़ा स्टोर होगा, तो एक चुनौती आपके लिए यह भी है कि उसमें से आप किसे छांटें, किसे महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि सभी को पढ़ पाना, याद रख पाना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट को छांट लें और उसे फिर रिवाइज भी करें, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, करंट अफेयर से भी जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से घुमावदार होंगे, तो आप वहां से मदद ले सकते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज वाले थोड़े से उसमें से जो पूरा का पूरा जो भंडार है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट को छांट करके आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से शायद आपको ज्यादा छांटने की जरूरत न पड़े, तो आप उससे मदद ले सकते हैं। और तीसरी बात यह भी होती है कि बीच बीच में कुछ इस तरह के करंट अफेयर से संबंधित चीजें प्रोवाइड करते रहते हैं। आजकल तो दुनिया भर के इस तरह के चैनल्स हो गए हैं, संस्थान भी हो गए हैं जो कुछ कलेक्शंस आपको देते रहते हैं, तो अगर आप उन कलेक्शंस पर भी अपनी निगाह रखेंगे तो आपकी जरूरत की काफी चीजें उससे पूरी हो सकती हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स का जो रोल है वो दो तरह से है। पहला तो यह है कि आप उन्हें सीधे अगर करंट अफेयर्स का मान करके चलें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 में से मिनिमम 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होंगे, मिनिमम 15 क्वेश्चंस, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे सब्जेक्ट में डाल दें, जैसे कि मान लीजिए कि ज्योग्राफी पर जो क्वेश्चन आया है तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी का लेकिन वो करंट अफेयर्स का भी है, तो उनकी संख्या फिर काफी कम हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर कम हो गई तो हमारे लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स से आप नहीं जुड़े रहेंगे तो सब्जेक्ट के तहत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपसे नहीं बनेंगे और टोटल तो आपका जो स्कोर है वो कम हो ही जाएगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में मुझे कुछ इतनी बातें आपसे कहनी थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अतुल पाठक, सूरज कुमार, ऋचा और अनूप राज। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।